धवला पुस्तक तेरावी लेक्चर नंबर 2 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् सयलोवसगणिवः संवरणेनेव जस्स फिट्टन्ति पाशस्सतसणम्यूम् पाषणुयोगम् परुएमुहुम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें अभी हमारा 5वां खंड शुरू हुआ है, उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें से स्पर्श अनुयोग द्वार की बात अपनी चल रही है। यहाँ तो उन्होंने बताया था कि जो स्पर्श अधिकार है यानी स्पर्श के जो अनुयोग द्वार चल रहे हैं, तो ये स्पर्श उसमें कौन कौन से अनुयोग द्वार आने वाले हैं, तो हमने 16 बताए थे 2 नंबर के पृष्ठ पर। उसमें स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नहीं विभाषणता, जो जो हमने वेदना के बारे में देखे थे ऐसे वो अधिकारों के नाम तो सेम है। उसमें से स्पर्श निक्षेप और स्पर्श नहीं विभाषणता की बात चली। उन्होंने शुरुआत तो स्पर्श निक्षेप से शुरुआत की थी, और वो कितने होते हैं वो तो उन्होंने 13 नाम बताए थे 3 नंबर के पृष्ठ पर, के नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, द्रव्य स्पर्श, एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, देश स्पर्श, त्वक स्पर्श, सर्व स्पर्श, स्पर्श स्पर्श, कर्म स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और भाव स्पर्श। उसके बाद उन्होंने कौन सा निक्षेप किसने का विषय है इसके लिए पहले नये की चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जो नयगम नय है उसका विषय तो सभी जो निक्षेप है उसका विषय होता है। ये बात हमने देखा था 4 नंबर के पृष्ठ पर कि नयगम नय तो सभी स्पर्शों के ने 13 के 13 उसके विषय है, परंतु व्यवहार ने और संग्रह ने बंद स्पर्श और भव्य स्पर्श को स्वीकार नहीं करते। वो क्यों नहीं करते उसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद 6 नंबर के पृष्ठ पर हमने ये बात देखी कि ऋजु सूत्र नय किसको स्वीकार नहीं करता है, तो कहते एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर स्पर्श, बंध स्पर्श, भव्य स्पर्श और स्थापना स्पर्श को भी स्वीकार नहीं करता। शब्द नय 3 को स्वीकार करता है, कौन से? नाम स्पर्श, स्पर्श स्पर्श और भाव स्पर्श। इसके बाद उन्होंने अब ये जो नाम स्पर्श एक एक को लेकर ये निक्षेप के द्वारा उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। तो नाम स्पर्श उसमें हमने 8 भंग देखे थे, एक जीव अनेक जीव और फिर उनके कॉम्बिनेशन जीव या जीव, एक जीव एक अजीव, नाना जीव नाना अजीव वगैरह वगैरह, 8 प्रकार से भंग बताए थे। फिर उसके बाद स्थापना स्पर्श बताया था, किसी अन्य चीज में अन्य वस्तु की स्थापना, अन्य वस्तु ने स्पर्श की स्थापना करना, उसमें काष्ठ स्पर्श, चित्र स्पर्श, लेप स्पर्श वगैरह हमने बातें देखी थी। ये अलग अलग बातें, यदि वो तो हो गया नाम और स्थापना की बात हो गई। अब अपने 11 नंबर के पृष्ठ से द्रव्य स्पर्श का अधिकार चल रहा है, द्रव्य निक्षेप घटा रहे यहाँ पर। यहाँ द्रव्य स्पर्श यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्पर्श को प्राप्त होता है, उसी को द्रव्य स्पर्श कहा था। तो उसमें तो कहते हैं जीव अरूपी है, उसको स्पर्श कैसे होगा? तो कहते हैं कि वो अनादि से बंधा हुआ है, और जब तक वो कर्म से बंधा हुआ है उसको कथनचित मूर्तपना बनता है, उसकी बात भी हमने देखी थी। अब यहाँ 12 नंबर के पृष्ठ पर आए हम, वहाँ शंकाकार ने शंका पूछी थी नीचे से एक पैराग्राफ के ऊपर जो शंका लिखी है ना वहां से, कि द्रव्य की स्पर्श संज्ञा कैसे, द्रव्य स्पर्श कहा तो द्रव्य को स्पर्श क्यों कहा? तो कहते क्योंकि जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है, ऐसे अगर व्युत्पत्ति करेंगे शब्द की, तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्पर्श शब्द की सिद्धि होने से द्रव्य की स्पर्श संज्ञा बन जाती है। यानी जिसके द्वारा स्पर्श हुआ उसी द्रव्य को ही हमने स्पर्श कह दिया। अब यहां से हम पढ़ेंगे, अपना विषय आज का यहां से शुरू हो जाता है। सत्व और प्रमेयत्व आदि की अपेक्षा सदृश ऐसे छहों द्रव्यों के भी, क्या कहना चाहते हैं? छह द्रव्यों में क्या समानता बताइए? सत्व यानी अस्तित्व, हुआपणु, और प्रमेयत्व यानी किसी न किसी ज्ञान का विषय होना, आदि जिसको हम कहें सामान्य गुणों की अपेक्षा उसमें सदृश होना है, क्योंकि वो गुण सभी में पाए जाते हैं। तो सत्व अस्तित्व लिया और लास्ट एक प्रमेयत्व लिया। आदि की अपेक्षा सदृश यानी समान ऐसे छह द्रव्यों के भी द्रव्य स्पर्श नैगम नय की अपेक्षा पाया जाता है। इसलिए एक आदि संयोग उनकी अपेक्षा जितने भंग उत्पन्न होते हैं। अभी छह द्रव्य है तो एक आदि भंग ने सबको सिंगल सिंगल रखो, फिर दो दो की बात करो, उन्हें बतलाते हैं। यानी एक संयोगी छह भंग हो गए। अब कहते यथा, अब ये भंगों की संख्या कैसे निकालना वो भी बताएंगे। द्विसंयोगी भंग कितने हो गए छह चीजों में?
टोटल
64 नहीं, टोटल नहीं पूछे हमने। द्विसंयोगी भंग कैसे हो गए? हाँ कैसे, वो वहां पढ़कर एक कम गच्छ का एक पर संकलन, यानी छह है ना, तो पांच चीज, देखो ये एक एक चीज का पांच पांच के साथ संकलन ये होगा। यानी पहली जो संख्या है हमने ABCDEF, तो ए का अन्य पांच के साथ द्विसंयोगी होगा, बी का चार के साथ, सी का तीन के साथ, इस तरह से हम लेंगे तो एक से लेकर पांच तक के सभी पॉसिबिलिटीज होगी। तो पांच का संकलन करना 15 होता। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, अभी हम एक संयोगी की बात करेंगे। पेज नंबर 12 नीचे से चौथी लाइन, एक जीव दूसरे जीव द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि एक निगोद शरीर में समवेत अनंत निगोद जीवों का अवस्थान पाया जाता है, इसलिए उसको उसके नजदीकता है, उसको स्पर्श कहा। अथवा जीव रूप से उन सब में एकत्व देखा जाता है, यानी सभी जीव है इस तरह से एकत्व है, इसको उसको स्पर्श कह दिया। एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के द्वारा, वो एक भंग हुआ, एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि समवेत अनंत पुद्गल परमाणु पाए जाते हैं, अथवा पुद्गल रूप से उनमें एकत्व देखा जाता है। यानी दोनों ओर से बताइए, एकत्व की अपेक्षा भी और वो एक दूसरे में इकट्ठा पाए जाते हैं। धर्म द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, तो यहाँ दो धर्म द्रव्य कहाँ से लाए? तो कहते क्योंकि असंग्रहिक नैगम नय की अपेक्षा लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण और पृथक पृथक द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हुए धर्म द्रव्य के प्रदेशों का परस्पर में स्पर्श देखा जाता है। एक ही द्रव्य है और उसके प्रदेशों की अपेक्षा से उसको स्पर्श कहा। ये असंग्रहिक नैगम ने, यानी उनको संग्रह नहीं करना, उसको जुदा जुदा रखना। अधर्म द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्रहिक नैगम ने की अपेक्षा द्रव्य भाव को प्राप्त हुए अधर्म द्रव्य के स्कंध देश प्रदेश और परमाणुओं का एकत्व देखा जाता है। आप कहेंगे अधर्म द्रव्य के परमाणु कैसे कहते हैं? तो परमाणु नहीं, उसके एक एक प्रदेश, उसको यहाँ परमाणु कहा। अभी स्कंद किसको कहेंगे, देश किसको कहेंगे, प्रदेश किसको कहेंगे, ये बात हमने पंचाध्यायी में पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो यानी उसके जो आधे से बड़े उसके जो भाग को स्कंद कहेंगे, फिर आधे से कम उसको देश कहेंगे, और छोटे भाग को प्रदेश कहेंगे, और परमाणु ने एकदम एक एक सिंगल प्रदेश। काल द्रव्य, काल द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त होता है, क्योंकि एक क्षेत्र में स्थापित मुक्ता फलों के समान समवाय से रहित, समवाय ने उनके इकट्ठे वो चिपक नहीं एक दूसरे को, जुदा जुदा है, परंतु मुक्ता फल किसको कहेंगे? हाँ, ये कौन सा फल है? मोतियों के समान, हाँ, समवाय से रहित लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण काल परमाणुओं का काल रूप से एकत्व देखा जाता है। सभी काल 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 की अपेक्षा एकत्व है, अथवा एक लोकाकाश में अवस्थान होने से उनमें एकत्व देखा जाता है। अलग अलग अपेक्षा लगाकर इसकी बात कर रहे हैं। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य के द्वारा स्पर्श को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि नैगम नय की अपेक्षा पृथक पृथक द्रव्य भाव को प्राप्त हुए। ऊपर जिसको असंग्रहित नैगम नय कहा था, उसी को यहाँ पृथक पृथक द्रव्य भाव को प्राप्त हुए। आकाश के स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु का परस्पर स्पर्श देखा जाता है।
आकाश को पृथक पृथक द्रव्य भाव कैसे कहता है? पृथक पृथक द्रव्य भाव बताए आकाश पे,
जो ऊपर जो बताया था धर्म द्रव्य में, क्या बताया था?
अच्छा,
पृथक पृथक द्रव्य संज्ञा को प्राप्त हुए धर्म द्रव्य के प्रदेशों का परस्पर में स्पर्श देखा जाता है। वही अपेक्षा सब जगह लगाना है। प्रकृत में उपयुक्त गाथा है, उसके लिए उन्होंने जो कुछ आधारभूत गाथा बताया दो और तीन में, लोगागास पदे से एक एक के जेठिया हुए के का रयणाणम राशि इव ते कालाणु मुने युवा खंदम सयल समत्थम तस्सदु अद्धम भणन्ति देशोक्ति अद्धद्धम च पदेशो अविभागी सोजो परमाणु। देखो पंचाध्याय लिखा है नीचे, मुझे याद था हमने ये पंचाध्याय में पढ़ा था, मूलाचार में भी ये गाथा है, तिलोक पन्नति में भी है, गोमटसार में भी है। और पहली जो गाथा तो गोमटसार जीव कांड में बताई थी, और जो द्रव्य संग्रह में भी आई है परसों हमने पढ़ी थी, उसका अर्थ देखते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर लोकाकाश प्रदेश से एक एक के रत्नों की राशि के समान जो एक एक स्थित है, रेणानम राशि व एक एक का जे ठिया हो वे कालाणु है, ऐसा जानना चाहिए। वो एक कालाणु के बारे में बताया, और स्कंध, देश, प्रदेश किसको कहना उसकी बात यहाँ बताते हैं। जो सर्वांश में समर्थ है उसे स्कंध कहते हैं, उसके आधे को देश और आधे के आधे को प्रदेश कहते हैं, तथा जो अविभागी है उसे परमाणु कहते हैं। यहाँ प्रदेशों की अपेक्षा एक प्रदेश को एक परमाणु कहने की बात है। अब द्विसंयोग की अपेक्षा, हमारे पास छह द्रव्य हैं, पहले एक संयोगी छह भंग हुए, अब द्विसंयोगी 15 भंग कहेंगे, तो द्विसंयोग की अपेक्षा द्रव्य के भंगों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। यथा अभी जीव के साथ एक एक द्रव्य को लेना, फिर पुद्गल के साथ और एक एक, ऐसे जीव के साथ पुद्गल को लिया तो पुद्गल के साथ जीव उल्टा नहीं लेना, आगे आगे के ले लेना। जैसे हमने ए के साथ बी सी डी आगे के लगाना, बी के साथ ए नहीं लगा क्योंकि ए बी वाला भंग हो गया है। तो कहते जीव द्रव्य के द्वारा पुद्गल द्रव्य स्पर्श किया जाता है, क्योंकि जीव द्रव्य का अनंतानंत कर्म व नव कर्म रूप पुद्गल स्कंधों के साथ एकत्व देखा जाता है। जीव द्रव्य और धर्म द्रव्य का परस्पर में स्पर्श है, क्योंकि सत्व व प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा और लोकमात्र क्षेत्र के अवस्थान की अपेक्षा इनका एकत्व देखा जाता है। एक तो उन्होंने समान की अपेक्षा एकत्व घटित किया है और पूरे लोक में धर्म द्रव्य व्याप्त है और जीव भी वहीं पर रहता है, इसलिए भी स्पर्श बताया है। अब ये छह भंगों के आगे उनकी संख्या नाप रहे हैं, इसलिए 6 और 15 21 तक ये द्विसंयोगी बताएंगे। जीव और अधर्म द्रव्य का परस्पर में स्पर्श है, कारण पहले के समान कहना चाहिए। 9 यानी 6 और 3 ये 9 हो गए। जीव और काल द्रव्य का स्पर्श है, कारण सुगम है। जीव और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, कारण सुगम है। अब जीव पर लगा लिए ना 5, जीव और उसके आगे के 5। अभी पुद्गल पर 4 लगाएंगे। पुद्गल और धर्म द्रव्य का स्पर्श है, ये 12 नंबर हुआ। यानी कंटिन्यूएशन में गिन रहे, पुद्गल और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। मैंने पुद्गल के साथ ये 12, 13, 14, 15 4 भंग लगाए। अब धर्म के साथ अधर्म, आकाश और काल, धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, दोनों ही पूरे लोक में व्याप्त है। धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अभी अधर्म के साथ आकाश और काल दो ही रह गए। अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। यहां तक द्विसंयोगी भंग समाप्त होते 21, 6 पहले 6 और ये 15, 21 हो गए। अब त्रिसंयोगी भंग कहेंगे। अभी त्रिसंयोगी भंग कैसे निकालना? दो माइनस का करके उसका 2 बार संकलन करना पड़ेगा।
6 माइनस 2
4 का 2 बार संकलन कितना होता है?
10 हो जाएगा ना?
अरे 10 कैसे होगा? 4 गुना 5 गुना 6 डिवाइडेड बाय 1 गुना 2 गुना 3 ये चला गया, 20 हो जाएगा। देखो देखो, द्विसंयोगी भंग के लिए क्या किया, हमारे पास 6 बातें हैं, तो एक कम करना, एक बार संकलन करना, संकलन धन जिसको कहेंगे। अभी हमारे पास 3 संयोगी, तो 6 में से 2 कम करो, 4 का 2 बार संकलन धन, तीसरा से आता है, तो इसके 20 भंग हो गए। जैसे हमारे ABC ACD इस तरह से इसको अभी पढ़ेंगे, वो 20 बताएंगे यहाँ से आगे। यानी 21 के बाद 41 तक त्रिसंयोगी चलेंगे, बताएंगे अभी वो। हाँ देखो देखो, ये द्विसंयोगी भंग के लिए क्या है, वो जो संख्या हमारी 4, उसके आगे के 2 संख्याएं लिखना। ऊपर 4, 5 और 6 हो गए, तो नीचे 1, 2 और 3 लिख देना। पहले हमने क्या किया था, 6 में से 1 कम कर दिया था, तो 5 का 1 बार संकलन धन कैसे निकाला था, 5 को आगे की 1 संख्या 6 से गुणा करो और नीचे 1 और 2 का गुणा करके उसको भाग दो। यहाँ 15 आए थे, यहाँ 4 का 2 बार संकलन 20 आता है। आगे पढ़ते देखो, 22 नंबर को पढ़ेंगे। जीव पुद्गल और धर्म द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, 23 हो गया। जीव पुद्गल और काल द्रव्य का स्पर्श है, उन्होंने सर्वत्र काल को पहले लिया, बाद में आकाश को लिया। जीव पुद्गल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, जीव अभी देखो, जी पहले जीव और पुद्गल को कायम रखा और आगे के चेंज किए। अब पुद्गल के साथ, जीव और पुद्गल के साथ आगे के सब हो गए, अब जीव और धर्म के साथ आगे के लगाएंगे। तो कहते जीव धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है 26 नंबर, जीव धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है 27 पर, जीव धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है 28 पर। अभी जीव और धर्म का कॉम्बिनेशन के साथ एक एक और हो गया, अब जीव और अधर्म करेंगे। जीव अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है 29, जीव अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है 30। अब काल के साथ जीव काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, यानी जीव के साथ सभी तीन संयोगी भंग हो गए। अब पुद्गल को ले लेंगे, पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है। अब पुद्गल और धर्म को फिक्स रखेंगे, पुद्गल धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है 33 हो गए, पुद्गल धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है 34। पुद्गल और धर्म का कॉम्बिनेशन हो गया, पुद्गल अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, पुद्गल अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये अधर्म के साथ भी हो गए। पुद्गल काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये 37 हो गए, तो पुद्गल के भी भंग हो गए। अब धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है 38 हो गए, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, यानी धर्म के साथ अधर्म रखते हुए आगे का काल लिया, धर्म के साथ अधर्म रखते हुए आगे का आकाश लिया। अब धर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये तो हो गया, एक ही लगे उसमें। अब अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, बाकी सब कॉम्बिनेशन वो पूर्व के साथ हो गए। अब ये लास्ट है, यानी ये यहाँ तक त्रिसंयोगी भंग हो गए। अब चतुस्संयोगी भंग लेना है। अब 20 के बाद फिर वापस 15 हो गए। चतुस्संयोगी में क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ हमने 6 माइनस काहे के करेंगे, वहाँ 2 माइनस किए थे, यहाँ 3 माइनस करना, तो 3 का 4 बार संकलन धन, तो 3 के आगे 4 संख्या लिखो, 4, 5, 6 और 7, और नीचे उतने ही लिखना है, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी 3, 4, 5 यहाँ से निकल गए, नहीं, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, 3, 4 और 5 गए, कुछ गड़बड़ी हो गई, 5, 3, 15 यहाँ तक ही चाहिए था ना, 7 नहीं चाहिए, 3 और 4 ही गए। देखो हमने 5 का एक बार संकलन, 4 का 2 बार संकलन, 3 का 3 बार ही संकलन चाहिए, मैंने 4 लिखा, ऊपर 3, 4, 5, 6 हो जाएगा और नीचे 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 गए, मैत्रिक सहा, 5, 3, 15 है ना, ये 15 आ गए। अभी चतुस्संयोगी भंग 15 होते हैं, उसकी बात चलेगी। यानी हमने देखा पहले 6 संयोगी हुए थे, फिर 15 हुए थे, फिर 20 तक पहुंचे थे, फिर वापस 15 पर आ गए, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 1 में आ जाएंगे, इस तरह से। देखो अभी पढ़ते हैं हम, 4 संयोग लेना है। जीव पुद्गल धर्म और अधर्म द्रव्य का स्पर्श है, 42 नंबर हो गया। अब जीव पुद्गल और धर्म को कायम रखो, जीव पुद्गल धर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, 43 हो गया। जीव पुद्गल धर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये तो जीव पुद्गल और धर्म को कायम रखा था हमने। अब जीव पुद्गल अधर्म लेना और काल द्रव्य का स्पर्श है, जीव पुद्गल अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये हो गए उसके। अब जीव पुद्गल के साथ काल लेना, जीव पुद्गल काल और आकाश द्रव्य स्पर्श है, ये तो एक ही हो गया। अब जीव के साथ पुद्गल की बात हो गई, अभी जीव धर्म अधर्म और काल का द्रव्य का स्पर्श है, फिर जीव धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब जीव धर्म अधर्म के बाद छोड़ देना, काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, फिर जीव अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श, अभी जीव के सब हो गए। अब पुद्गल के साथ, पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है, फिर पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। पुद्गल धर्म अधर्म हो गया, अभी पुद्गल धर्म और काल लेना। पुद्गल धर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, धर्म के साथ यही लगेगा। फिर पुद्गल अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, ये पुद्गल की बातें हो गई। अब धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, अब ये जो उसके आगे दूसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो चतुस्संयोगी ऐसे 15 भंग हो गए। अब पंच संयोगी भंग लेना है। पंच संयोगी भंग में अभी हमने जो 7 को लिया था ना इस तरह से, अभी क्या करना है, 6 में से 4 कम करो,
2, 3, 4, 5, 6।
हाँ, 2 का 4 बार संकलन, 2 के आगे 4 फिगर, 3, 4, 5, 6, नीचे 1, 2, 3, 4 और 5, बीच में वो इंटू कर देना। अब ये 2, 3, 4, 5 गए ना, और यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5 गए, तो 6 आ गए। 2 का 4 बार संकलन 6 आ जाता है। डायरेक्ट संकलन निकालने की पद्धति मालूम है,
6 का संकलन कैसे, 6 बार 2 लिख के आपस में गुणा करके 1, सभी का सब कॉम्बिनेशन
है। वो नहीं मैं पूछ रही हूँ, 2 का, अभी 2 का हमने देखा, 3 का 4 बार, 3 बार करो, 2 का 4 बार करो, कैसे निकालना, जैसे हमने देखा ना 1, 2, 3, 4, 5 सबकी टोटल करते तो एक बार संकलन होता है। फिर हमें 4 का 2 बार संकलन लेना था, यानी ये सबकी टोटल कर दी थी। अगर 4 का 2 बार संकलन करना है तो 1 का 1 रखो, 2 1 3 रखो, 3 3 6 लिखो, 4 6 10 लिखो, इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, ये 4 का 2 बार हुआ
20
का है कि हो गया, हाँ हाँ, ये 10 और ये 10, हाँ 20 हो जाएगी। अब 3 का 3 बार करना है तो कैसे करना, 1 का 1 रखो, 3 1 4 रखो, 6 4 10 रखो, ये 3 का 3 बार हुआ, 15 हो गया। अब 2 का 4 बार करना है तो इसके आगे 1 का 1 रखो, 4 1 5 रखो, ये 6 हो जाएगी। पर ये इतना झमेला नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट हमने ये जो जीवकांड में ही सिखाया था कैसे निकालना। तभी पंच संयोगी भंग की बात देखेंगे, यानी जीव सहित 5 नाम लेंगे तो यहाँ 57 नंबर को हमको पढ़ना है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य का स्पर्श है। अब काल के बदले आकाश लेना। जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का स्पर्श है, 2 हो गए। अब जीव पुद्गल धर्म अधर्म को छोड़ दिया, काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब धर्म के बदले अधर्म लिया, जीव पुद्गल अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब पुद्गल को छोड़कर जीव धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। अब जीव को छोड़ो और पुद्गल को ले, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। इस तरह से ये 6 भंग हो गए, यानी अभी तक पहले तो 6 हो गए, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6, 62 हो गए यहाँ तक। षट संयोगी एक ही होगा ना, 6 को पूरे 6 के 6 ले लिए। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य का स्पर्श है। इस प्रकार द्रव्य स्पर्श के 63 विकल्प सकारण कहने चाहिए। सकारण जो उन्होंने कारण बताया, कहीं एकत्व है, कहीं प्रदेशों की बात है। यहाँ उपयोगी पड़ने वाली गाथा, चार नंबर का जो गाथा है ना ऊपर, उसको पढ़िए। सत्ता सौ अपयथा सविस्सरुवा अनंत पच्छाया भंगुपाय धुवत्ता सब परिवखा हवई एका। उसका अर्थ, सत्ता सब पदार्थों में स्थित है। सत्ता जिसको हम कहेंगे सत्ता, यानी अस्तित्व, महासत्ता भी कहते, सभी पदार्थों में है। सविश्वरूप है, विश्वरूप का अर्थ होता है अनेक रूप, यानी अनेक रूप है, हर एक की अपनी अपनी है, तो कहते अनेक रूप है। अनंत पर्याय वाली है, नाश उत्पाद और द्रव्य स्वरूप है तथा स्वप्रतिपक्ष होकर भी एक है। अभी उसी का विशेषार्थ बता रहे हैं। यहाँ द्रव्यों के स्पर्श के भेद और उनके कारणों की विस्तृत चर्चा की गई है। सब द्रव्यों के दो प्रकार का संबंध दिखलाई देता है, एक अनादि संबंध और दूसरा सादि संबंध। धर्म आदि चार द्रव्यों के साथ जीव और पुद्गल का तथा उनका परस्पर में अनादि संबंध है, यानी चार द्रव्यों के साथ भी और आपस में भी, तथा जीव जीव का, जीव पुद्गल का, पुद्गल पुद्गल का दोनों प्रकार का संबंध देखा जाता है, सादि भी और अनादि भी। प्रकृत में स्पर्श शब्द की व्याख्या है जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है या जो स्पर्श करता है। इस व्याख्यान के अनुसार सभी द्रव्यों का परस्पर में स्पर्श भाव बन जाता है। बंध विशेष की अपेक्षा जीव जीव के साथ, जीव पुद्गल के साथ, पुद्गल पुद्गल के साथ परस्पर संश्लेष को प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए इनका तो स्पर्श है ही। संश्लेषण कुछ काल के लिए उनका जो जुदा न हो सके ऐसा बंध होता है उसको संश्लेष का। किंतु सत्व प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा इनका अन्य द्रव्यों के साथ और अन्य द्रव्यों का परस्पर में स्पर्श बन जाता है। नए विशेष की दृष्टि से यह योजना की गई है जिसका खुलासा मूल में किया ही है, यानी किसी विशिष्ट नए की अपेक्षा, किसी अपेक्षा से ये बात बताई है। इस प्रकार छह द्रव्यों के स्वसंयोगी द्विसंयोगी आदि की अपेक्षा कुल भंग 63 होते हैं। स्वसंयोगी यानी एक, छह, द्विसंयोगी 15, त्रिसंयोगी 20, चतुस्संयोगी 15, पंचसंयोगी 6 और षट्संयोगी 1, कुल 63 भंग होते हैं। इनका स्पष्टीकरण मूल में किया ही है। हमने पहले देखा था भंगों की संख्या कैसे निकालनी है, तो हमारे पास 6 है द्रव्य, तो 6 बार 2 लिखकर आपस में गुणा करो तो कहेंगे 64 आ जाएगी, उसमें माइनस 1 करना, 63 भंग हो जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। अभी आगे 14 नंबर को, 13 नंबर को देखते। जो सो एक हित फासु नामा। अभी तक हमने क्या क्या देखे थे, नाम स्थापना द्रव्य है ना, अभी एक क्षेत्र को देखेंगे। द्रव्य स्पर्श को 3 नंबर दिया था, ये नंबर 4, चौथा निक्षेप है। तो कहते जो सो एक हित फासो नाम। अब एक क्षेत्र स्पर्श का अधिकार है, इसकी अर्थ प्ररूपणा करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब किसको कहना उसको बताएंगे यहाँ पर। जम दव्य में यक खेत न फुसदी सो सवो एक खेत फासो नाम। जो द्रव्य एक क्षेत्र के साथ स्पर्श करता है वह सब एक क्षेत्र स्पर्श है। कहते एक आकाश प्रदेश में स्थित अनंतानंत पुद्गल स्कंधों का समवाय संबंध या संयोग संबंध द्वारा, क्या कहते हैं, यानी वो सिंगल सिंगल जुदे जुदे बिना बंधे हुए भी रह सकते हैं और बंध कर भी रह सकते हैं, इसलिए या तो समवाय लिया या संयोग संबंध द्वारा जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्र स्पर्श कहलाता है, अथवा बहुत द्रव्यों का युगपत एक क्षेत्र के स्पर्शन द्वारा एक क्षेत्र स्पर्श कहना चाहिए। इसको हम एक क्षेत्रावगाही भी कहते हैं ना, उसी आकाश के प्रदेश में अनेक द्रव्य हैं। विशेषार्थ 17 नंबर पेज। यहाँ एक क्षेत्र स्पर्श का विचार किया गया है। एक क्षेत्र स्पर्श में एक शब्द क्षेत्र का विशेषण है, तदनुसार यह अर्थ फलित होता है कि विवक्षित एक आकाश के प्रदेश के साथ अनंतानंत पुद्गल स्कंधों का या अनेक द्रव्यों का युगपत जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्र स्पर्श कहलाता है। अब अनंतर क्षेत्र की बात करेंगे, यानी पांच नंबर का निक्षेप होगा। कहते अब ऊपर पढ़े ना, जम दव्वम अनंतर खेत्य न फुसदी सो सव्वो अनंतर खेत्य फासो नाम। जो द्रव्य अनंतर क्षेत्र के साथ स्पर्श करता है वह सब अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। शंकाकार पूछते हैं, अनंतर क्षेत्र किसे कहते हैं? उसका समाधान, एक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र को देखते हुए अनेक आकाश प्रदेश रूप क्षेत्र अनंतर क्षेत्र है, क्योंकि एक और अनेक संख्या के मध्य में अन्य संख्या नहीं उपलब्ध होती। दो प्रदेशों में स्थित द्रव्यों का दो आकाश के प्रदेशों में स्थित अन्य द्रव्यों के साथ जो स्पर्श होता है वह अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। दो प्रदेशों में स्थित स्कंधों का और तीन प्रदेशों में स्थित स्कंधों का जो स्पर्श होता है वह भी अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। इसी प्रकार चार पांच आदि प्रदेशों में स्थित स्कंधों के साथ दो संयोग का कथन करते समय कुछ कम लोक में स्थित महास्कंध के प्राप्त होने तक द्वितीय अक्ष का संचार करना चाहिए। ओहो, इस क्रम से सभी द्विसंयोगी भंगों का यथासंभव कथन करके तीन संयोगी आदि भंगों का भी कथन करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अक्ष संचारण, अभी देखो पहले क्या लिया, एक ही प्रदेश में स्थित आपस में, अभी दो प्रदेशों के साथ, हाँ तो दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ, दो का पांच के साथ, दो का छह के साथ, ऐसे तो कुछ कम महास्कंध के साथ वहां तक ले जाना, यानी दो प्रदेशों के साथ कुछ कम महास्कंध का स्पर्श होना, उसको अभी तीन का संयोग ले लेना, यानी द्विसंयोगी भंग सभी हो गए ना, फिर त्रिसंयोगी वगैरह वगैरह। अथवा पूर्वोक्त सूत्र में स्थित जो एक शब्द है वह संख्यावाची है ऐसा नहीं कहना चाहिए, किंतु समानार्थवाची है ऐसा कहना चाहिए। इस स्थिति में समान अवगाहना वाले स्कंधों का जो स्पर्श होता है वह एक क्षेत्र स्पर्श है, और असमान अवगाहना वाले स्कंधों का जो स्पर्श होता है वह अनंतर क्षेत्र स्पर्श है। दूसरी पद्धति से बताएं, पहले तो एक प्रदेश और अनेक प्रदेशों की अलग अलग बात की थी, अब यहाँ तो अलग अपेक्षा लगाते हैं। अभी 18 पेज पर आना, इसे अनंतरपना कैसे प्राप्त होता है उसका समाधान, क्योंकि समान और असमान क्षेत्रों के मध्य में अन्य क्षेत्र नहीं उपलब्ध होता, इसलिए इसे अनंतरपना प्राप्त है। अनंतर यानी जो एक नहीं वो उसको अनंतर कहा था, एक और अनेक का जो स्पर्श होता है उसको अनंतर कहा। अब यहाँ क्या ले, समान और असमान का आपस में जो होना स्पर्श उसको कहा अनंतर। विशेषार्थ, अनंतर शब्द सापेक्ष है, पहले एक क्षेत्र का विवेचन कर आए हैं, उसके सिवा शेष सब क्षेत्र अनंतर क्षेत्र कहलाता है, और इन क्षेत्रों में स्थित स्कंध का स्पर्श अनंतर क्षेत्र स्पर्श कहा जाता है। यदि एक का अर्थ समान किया जाता है तो अनंतर क्षेत्र स्पर्श का अर्थ असमान अवगाहना वाले स्कंधों का स्पर्श फलित होता है। दो जैसा अर्थ करेंगे वैसा उसका अनंत शब्द का अर्थ भी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार अनंतर क्षेत्र स्पर्श प्ररूपणा समाप्त हुई। अब देश स्पर्श की बात करेंगे हम, ये तो वहां का भी तीसरे पेज पर 6 नंबर का होगा ना निक्षेप, निक्षेप नंबर 6। ये नीचे का जो सूत्र है उसमें 13 के बदले 17 करो, ब्रह्मा हिंदी सूत्र में 13 लिखा है वो 17 करो। ऊपर पढ़ेंगे, जो सो देश फासो नामा। अब देश स्पर्श का अधिकार है, उसके अर्थ का विवेचन करते हैं। जम दौव देशम देशेन फुसदी सो सौवो देश फांसो नाम। जो द्रव्य का एक देश के साथ स्पर्श करता है वह सब देश स्पर्श है। एक द्रव्य का देश अर्थात अवयव यदि अन्य द्रव्य के देश अर्थात उसके अवयव के साथ स्पर्श करता है तो वह देश स्पर्श जानना चाहिए। यह देश स्पर्श स्कंधों के अवयवों का ही होता है, परमाणु रूप पुद्गलों का नहीं, क्योंकि वे निरवयव होते हैं। क्या कहते हैं? देश किसको कहेंगे? एक देश पार्शी, परमाणु तो एक प्रदेश ही है, उसका और पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु के संबंध को नहीं कहेंगे। स्कंधों के किसी छोटे एक भाग का अन्य द्रव्य के साथ स्पर्श होना उसको देश स्पर्श कहेंगे। यदि कोई ऐसा निश्चय करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि परमाणु निरवय होते यह बात असिद्ध है।
सिद्ध है।
उनको असिद्ध कहे, परमाणु को सावयव कहना चाहते हो। देखो परमाणु को भी सावयव सिद्ध कर रहे हैं। फिर से पढ़ते इसको, यानी वो हमने वाक्य जो पढ़ा ना वो ऐसा करने, यदि ऐसा कोई कहे तो बीच वाला फुल स्टॉप निकाल कर इन्वर्टेड डालना चाहिए। फिर से मैं पढ़ती पूरा पैराग्राफ 18 का। एक द्रव्य का देश अर्थात अवयव यदि अन्य द्रव्य के देश अर्थात उसके अवयव के साथ स्पर्श करता है तो वह देश स्पर्श जानना चाहिए। यह अभी ये इन्वर्टेड में डाला कि यह देश स्पर्श स्कंधों के अवयवों का ही होता है, परमाणु रूप उद्गलों का नहीं, क्योंकि वे निरवयव होते हैं। यहाँ तक वो इन्वर्टेड पूरा करो और बीच का फुल स्टॉप निकाल दो। यदि कोई ऐसा निश्चय करे तो वह ठीक नहीं है, यानी परमाणु को भी सावयव सिद्ध कर रहे। पूरा पढ़ो, क्योंकि परमाणु निरवयव होते यह बात असिद्ध है। असिद्ध है क्योंकि परमाणु को भी सावयव सिद्ध कर रहे हैं। अब वो फिर से एक इन्वर्टेड डाला कि परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, इस प्रकार परमाणुओं का निरवयवपना परिक्रम में कहा है। यदि कोई ऐसी शंका करे तो वह भी ठीक नहीं है, यानी वो डबल इन्वर्टेड इसमें से डाला। यदि कोई ऐसा कहे ना, वहां तक डबल इन्वर्टेड डालना, वहां का भी फुल स्टॉप नहीं चाहिए। यानी दूसरा कौन सा दलील किया कि परिक्रम में ऐसा कहा है कि परमाणु अप्रदेशी इसलिए इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको निरवयपन कहा। यदि कोई ऐसी आशंका करे तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रदेश का अर्थ परमाणु है। वह जिस परमाणु में समवेद भाव से नहीं है वह परमाणु अप्रदेश है, इस प्रकार परिक्रम में कहा है।
तो यहाँ के दो परमाणु में समवाय लिया और वो
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो परमाणु अप्रदेशी होता है, उसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता, इस प्रकार परमाणुओं का निरवयपना परिक्रम में कहा है। ऐसी अगर कोई शंका करता है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदेश का अर्थ परमाणु है। जिस परमाणु में समवेद भाव से नहीं है प्रदेश, वह परमाणु अप्रदेशी है। यानी परमाणु भी प्रदेश, प्रदेश का ही अर्थ परमाणु कहा है, और जिस परमाणु में वह नहीं है वह परमाणु अप्रदेशी कहा है, इसलिए परमाणु निरवय होता है यह बात परिक्रम से नहीं जानी जाती। अब शंकाकार पूछ रहे परमाणु सावयव होता है किस प्रमाण से जाना जाता है। समाधान, स्कंद भाव को अन्यथा वह प्राप्त नहीं हो सकता, इसी से जाना जाता है कि परमाणु सावयव होता है। यदि परमाणु निरवय होते होवे तो स्कंदों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब परमाणुओं के अवयव नहीं होंगे तो उनका एक देश स्पर्श नहीं बनेगा, और एक देश स्पर्श के बिना सर्वस्पर्श मानना पड़ेगा, जिससे स्कंदों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। यदि एक एक परमाणु का स्पर्श नहीं होगा तो स्कंद ही नहीं बनेगा, ये उनको कहना है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि उत्पन्न हुए स्कंदों की उपलब्धि होती है, यानी स्कंद पाए जाते हैं, इसीलिए सिद्ध होता है परमाणु का परमाणु के साथ स्पर्श हो रहा है। इसलिए परमाणु सावय होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए।
तो यहाँ पे एक प्रदेश में जो परमाणु का संबंध है एक के दूसरे के साथ, वो सावय होते हैं, इसे बता रहे हैं।
परमाणु इटसेल्फ सावय है। सावय का अर्थ क्या, हाथ पैर होते, ऐसा नहीं लेना।
नहीं, नहीं,
नहीं, उसका दूसरे के साथ स्पर्श है, उसके बिना स्कंद नहीं बन सकता, ये यहाँ सिद्ध करना चाहते। एक स्पर्श की जो एक स्पर्श नहीं, देश स्पर्श का अधिकार है, उसकी अपेक्षा यहाँ चर्चा चल रही है। अब विशेषार्थ को समझा रहे। देखो, एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ जो एक देश स्पर्श होता है उसे देश स्पर्श कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक स्कंध का अन्य स्कंध के साथ बंध होने पर जो नया स्कंध बनता है वह देश स्पर्श का उदाहरण है। इसी प्रकार एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ बंध होने पर जो दो प्रदेशावगाही स्कंध बनता है वह भी देश स्पर्श का उदाहरण है। प्रकृत में परमाणु को सावयव सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी गई है और आगम का अर्थ किया गया है उसका भाव इतना ही है कि परमाणु के छेद करना तो शक्य नहीं है, पर पूर्व भाग और पश्चिम भाग इत्यादि रूप से उसका भी विभाग होता है। अन्य दर्शनों में परमाणु को जैसा सर्वथा निरंश कहा है वैसा निरंश जैन दर्शन नहीं मानता। सर्वथा की बात है, क्योंकि वो हमने इसको भी देखा था कि परमाणु छह प्रकार, छह ओर से उसको देख सकते हैं, इसलिए भी उसके छह अंश बताते हैं। उसकी अपेक्षा यहाँ भी सावयव घटित कर दिया। अब छह हुआ, सात नंबर का निक्षेप चलेगा, पेज थ्री का नंबर सात। अब इसका नाम है त्वक स्पर्श। ऊपर पढ़ते हैं, जो सो तय फासो नाम। अब त्वक स्पर्श का अधिकार है, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। जम दव्वम तयम वा नोतयम वा फुसदि सो सवो तय फासो नाम। जो द्रव्य त्वचा या नो त्वचा को स्पर्श करता है वह सब त्वक स्पर्श है। वृक्ष गच्छ या स्कंधों की छाल को, वो छल हुआ, छाल को त्वचा कहते हैं, साल कहते ना छाल। और उसके ऊपर जो पपड़ी का समूह होता है उसे नो त्वचा कहते हैं। अथवा सूरण अदरक प्याज और हल्दी आदि की जो बाह्य पपड़ी का समूह है उसे नो त्वचा कहते हैं। और जो द्रव्य त्वचा या नो त्वचा को स्पर्श करता है वह त्वक स्पर्श कहलाता है। शंकाकार पूछते हैं, श के ऊपर बिंदी लगा लो, यह त्वक स्पर्श द्रव्य स्पर्श में अंतर्भाव को क्यों नहीं प्राप्त होता? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि त्वचा और नो त्वचा स्कंध में समवेत है, अतः उन्हें पृथक द्रव्य नहीं माना जा सकता। स्कंध त्वचा और नो त्वचा का समुदाय द्रव्य है, पर एक द्रव्य में द्रव्य स्पर्श नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने पर विरोध आता है। क्या कहना चाहते हैं, जो स्कंध है उसमें अनेक द्रव्यों का समुदाय है, परंतु उसमें वो त्वक स्पर्श नहीं, वो द्रव्य स्पर्श नहीं कहेंगे उसको। यहाँ लिखा ना, यहाँ स्पर्श के भंग बतलाते हैं। यथा स्कंध त्वचा को स्पर्श करता है, एक भंग हुआ। स्कंद नौ त्वचा को स्पर्श करता है, दूसरा हुआ स्कंद त्वचाओं को स्पर्श करता है, अनेक त्वचा लिए, और स्कंद नौ त्वचाओं को स्पर्श करता है, यानी स्कंद को एक रखते हुए त्वचा को एक अनेक ले लिए, त्वचा और नौ त्वचा लिए एक एक, और त्वचा और नौ त्वचा लिए अनेक, स्कंद त्वचा और नौ त्वचा को स्पर्श करता है, यानी एट ए टाइम त्वचा और नौ त्वचा को स्पर्श कर रहा है। कहीं वृक्ष आदि विशेष में स्कंद एक त्वचा और अनेक नौ त्वचाओं को स्पर्श करता है, कहीं स्कंद अनेक त्वचाओं और एक नौ त्वचा को स्पर्श करता है, कहीं वृक्षादि का स्कंद अनेक त्वचाओं और अनेक नौ त्वचाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार आठ भंग होते हैं, जैसे हमने जीव अजीव के आठ भंग देखे थे, यहाँ स्कंद त्वचा और नौ त्वचा को स्पर्श करता है, उस अपेक्षा से आठ भंग लिए। अथवा स्कंद के बिना ही त्वचा और नौ त्वचा के स्पर्श संबंधी आठ भंग उत्पन्न करने चाहिए, यानी त्वचा ही नौ त्वचा को स्पर्श करती, इस तरह से वहां अन्य स्कंद त्वचा को स्पर्श करता है, इस तरह से लिया था। यहाँ अथवा कहके अलग आठ भंग उत्पन्न कर रहे, यथा त्वचा त्वचा को स्पर्श करती है, एक हुआ, नौ त्वचा को स्पर्श करती है, दो हुए, त्वचाएं त्वचाओं को स्पर्श करती है, तीन हुआ, नौ त्वचाओं को स्पर्श करती है, चार हुआ, त्वचा नौ त्वचा को स्पर्श करती है, पांच का हुआ, त्वचा नौ त्वचाओं को स्पर्श करती है, छह हुआ, त्वचाएं नौ त्वचा को स्पर्श करती हैं, ये सात हुआ, और त्वचाएं नौ त्वचाओं को स्पर्श करती हैं। अब शंकाकार पूछते हैं, त्वक स्पर्श देश स्पर्श में क्यों नहीं अंतर्भूत होता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि नाना द्रव्यों को विषय करने वाले देश स्पर्श में एक द्रव्य को विषय करने वाले त्वक स्पर्श का अंतर्भाव मानने में विरोध आता है। इसी का विशेषार्थ बताते हैं, द्रव्य स्पर्श में दो द्रव्यों के परस्पर स्पर्श की और देश स्पर्श में दो द्रव्यों के एक देश स्पर्श की मुख्यता रहती है। यही कारण है कि त्वक स्पर्श का इन दोनों स्पर्शों में अंतर्भाव नहीं किया। माना कि त्वचा नौ त्वचा और स्कंध अलग अलग अनेक परमाणुओं से बनते हैं, इसलिए इससे अनेक द्रव्यों का ग्रहण होना संभव है, पर यहाँ स्कंद रूप से इस सब को एक द्रव्य मानकर त्वक स्पर्श का पृथक से विवेचन किया गया है, शेष कथन सुगम है। अलग अलग अपेक्षा लगाकर उसका कथन हो रहा है। इस प्रकार त्वक स्पर्श प्ररूपना समाप्त हुई। अब 21 नंबर, जोसो सौव फासो नामा, ये तीसरे पेज का, ये अपना त्वक के बाद आठवां नंबर है, कितवा है?
आठवां,
क्योंकि त्वक स्पर्श त्वक वाली बात अपनी साथ हुई थी ना, ये आठ है, निक्षेप आठवा, तेरा निक्षेप बताए थे। कहते अब सर्व स्पर्श का अधिकार है, उसके अर्थ का कथन करते हैं। जम दौवम सौवम सौवेण फुसदि, जहाँ परमाणु दौवमिदि सो सौवो सौव फासो नाम, जो द्रव्य सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, यथा परमाणु द्रव्य, वह सब सर्व स्पर्श है। जो कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, वह सर्व स्पर्श है, यथा परमाणु द्रव्य। यह दृष्टांत वचन है, आगे इसका अर्थ कहते हैं। जिस प्रकार परमाणु द्रव्य अन्य परमाणु के साथ स्पर्श करता हुआ सबका सब सर्वात्मना स्पर्श करता है, उसी प्रकार अन्य भी जो इस प्रकार का स्पर्श है वह सर्व स्पर्श है, ऐसा जानना चाहिए। अब शंकाकार पूछते, यहाँ शंकाकार का कहना है कि यह दृष्टांत घटित नहीं होता, और क्यों नहीं घटित होता वो बता रहे। वह इस प्रकार से, एक परमाणु अन्य परमाणु में प्रवेश करता हुआ क्या एक देशे में प्रवेश करता है या सर्वात्मना प्रवेश करता है? प्रथम तो पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि परमाणु द्रव्य सबका सब अन्य परमाणु के साथ सर्वात्मना स्पर्श करता है, इस वचन के साथ विरोध आता है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि द्रव्य का द्रव्य में, गंध का गंध में, रूप का रूप में, रस का रस में और स्पर्श का स्पर्श में प्रवेश हो जाने पर परमाणु द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है। परंतु अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य का अभाव मानने में विरोध आता है। एक पुद्गल का अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य पुद्गल में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि पुद्गल में अवगाहन धर्म का अभाव है। और यदि उसमें अवगाहन धर्म का सद्भाव माना भी जाए तो आकाश द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है, क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को पुद्गल ने ही कर दिया। यदि कहा जाए कि सुवर्ण में पारद का अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही प्रवेश देखा जाता है, तो इस पर यह कहना है कि स्कंधों में स्कंधों का प्रवेश भले ही हो जाए, पारद ने पारा क्या कहते हैं ये एक्चुअली पारे में सोना रखते हैं ना, तो उसका वजन नहीं होता है। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना ना। सुवर्ण में पारद का अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही प्रवेश देखा, जो दूसरे दोनों एक दूसरे में प्रवेश कर देते हैं। मैंने तो ऐसा सुना है पारे से भरा कोई है और उसके अंदर हम सोना डुबो देते हैं तो
ऊपर देखते हैं
पारा। अच्छा, यानी उसमें पारे ने प्रवेश कर दिया, ऐसा ने सोने में पारा प्रवेश कर जाता है, यानी पारा उसके बिना सोने में पारा प्रवेश कर जाता है। यहाँ लिखा ना, हाँ, पारे ने मरक्यूरी वो उसमें बीपी एपरेटस की बात करे ना, वो बीपी एपरेटस वो पारा निकला फूट कर, तो बंगड़ी टूट गई इस तरह से, वो पिघल गई। अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही प्रवेश देखा जाता है।
अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता है,
पारा का पारा रहता है, वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है इस तरह से। यदि कहा जाए नहीं, वो तो कोई दलील ऐसा करेगा कि स्कंद में स्कंद ने प्रवेश कर दिया। हम देख रहे ना, एक स्कंद ने जैसे कांच में लाइट ने प्रवेश कर दिया, या पानी में हमने शक्कर या नमक डाला। देखो फिर से, यदि कहा जाए, ये सब किसकी चर्चा चल रही है?
नहीं सर, देखते स्पष्ट करना, नहीं सर्वस्पष्ट,
शंका चल रही है, शंकाकार दलील कर रहा है, इन्हें वो दलील देता है कि एक स्कंद में दूसरा स्कंद जाते हुए प्रवेश देखा जाता है, तो इस पर यह कहना है कि स्कंदों में स्कंदों का प्रवेश भले ही हो जाए, स्वयं ही दलील करता है, स्वयं भी एक एक को रूल आउट करता है, क्योंकि स्वरूप का परित्याग किए बिना ही क्षार छाणी और मिट्टी में जल आदि का प्रवेश देखा जाता है। जैसे पानी भी इसमें प्रवेश करता है, तो पानी रूप से रहता है, भले वो नमक में डालो, छाने में डालो, मिट्टी में डालो। छानी यानी वो शेन होगा, छानी क्या होते हैं, यानी पानी किसी भी चीज में डालो आप तो पानी पानी रूप से रहते हुए उसमें प्रवेश करता है, परंतु परमाणुओं में यह क्रम नहीं पाया जाता, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त स्थूल कार्यों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। अभी उसके ये सब दलीलें चल रही है, स्वयं ही उठाते हैं, स्वयं दलील कर रहे। यदि कहा जाए कि किन्हीं परमाणुओं का एक देशेन स्पर्श होता है और किन्हीं परमाणुओं का सर्वात्मना स्पर्श होता है, इसलिए परमाणुओं से स्थूल कार्य की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर स्यात किसी काल में सब पुद्गल एक परमाणु में प्रविष्ट हो जाएंगे, तब परमाणु मात्र अवस्थान प्राप्त होगा। तो कहते ऐसे उसमें प्रवेश करता है कहेंगे तो सभी पुद्गल मिलकर एक परमाणु में अवस्थान हो जाएगा। यदि कहा जाए ऐसा ही हो जाए तो यह भी बात नहीं है, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता, स्वयं ही फिर दलील का उत्तर दे रहे। तब तीन लोक के जीवों के शरीर का विनाश हो जाने से सब जीवों को मुक्ति का प्रसंग प्राप्त होता है, क्या कहते हैं? यदि सब पुद्गल एक परमाणु में प्रवेश कर जाए ऐसा मानेंगे तो ये तीन लोक के जीवों के जो इतने शरीर है वो सब नष्ट हो जाएंगे, सबको मुक्ति मिल जाएगी। यदि कहा जाए एक परमाणु में सब पुद्गल राशि प्रवेश नहीं करती किंतु स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। अरे अभी स्वयं ही उठाता है प्रश्न कि एक सभी तो पुद्गल नहीं प्रवेश करेंगे, कुछ प्रवेश करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्वल्प परमाणु ही प्रवेश करते हैं, इसका कोई कारण नहीं पाया जाता। यदि कहा जाए कि अधिक अवगाहन शक्ति नहीं पाई जाती इसलिए स्वल्प परिणाम परमाणु ही प्रवेश करते हैं, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश के सिवाय अन्य द्रव्य में अवगाहन धर्म नहीं पाया जाता। इस पर कहा जाए कि यदि परमाणु में परमाणुओं का प्रवेश नहीं होता तो असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में अनंत पुद्गलों का अवस्थान कैसे बनता है, सो भी कहना ठीक नहीं है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा।
देखो ये तो प्रवेश तो एक दूसरे में होता है, तभी तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेश पुद्गल रहते हैं। अब कहते वो भी वो रूल आउट कर रहा है, क्योंकि अवगाहन धर्म वाले आकाश के महात्म्य से अनंत पुद्गलों का असंख्य प्रदेशी लोकाकाश में अवस्थान मानने में कोई विरोध नहीं आता। ये तो पेज नंबर 21 पर शुरू हुई थी शंका, ये अभी 23 पर आकर पूरी हुई। उसके लिए अनेक दलीलें दी, अनेक स्वयं ने अनेक अनेक बातें रूल आउट कर दी। अब ये सभी शंकाओं का परिहार करेंगे। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं यथा परमाणु क्या सावयव होता है या निरवयव? सावयव तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमाणु शब्द के वाच्य रूप उससे अवयव पृथक नहीं पाए जाते। यदि उससे पृथक अवयव माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता। सावयव का अर्थ होता है ना अवयव सहित। अवयव सहित का अर्थ क्या है? अभी जीव कैसा है? शरीर सहित है, शरीर जुदा है, जीव जुदा है। ऐसे अवयव सहित है, अवयव जुदा है, परमाणु जुदा मानेंगे तो एक प्रदेश सिद्ध नहीं होगा। क्या कहते हैं? परमाणु शब्द के वाच्य रूप उससे अवयव पृथक नहीं पाए जाते, यानी उसके परमाणु जुदा है, उसके अवयव जुदा है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उससे पृथक अवयव माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि वह एक प्रदेश से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जितने भेद होने चाहिए उनके अंत को वह अभी प्राप्त नहीं हुआ। यानी परमाणु तो इसी को कहते हैं जो निरंश जो है, उसके दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसको परमाणु कहे। अब उससे अवयव जुदे मानते हो तो अवयव जुदे है, तो उससे परमाणु छोटा होना चाहिए। यदि कहा जाए अवयवी को ही हम अवयव मान लेंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बहुव्रीही समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। बहुव्रीही समास, ये समास अलग अलग होते हैं ना, कर्मधारय समास और क्या क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास, ये बहुव्रीही समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। कारण कि उसके बिना वह बन नहीं सकता। दूसरे, संबंध के बिना संबंध का कारणभूत ऋणी प्रत्यय भी नहीं बन सकता। यदि कहा जाए परमाणु के ऊर्ध्व भाग, अधो भाग और मध्य भाग रूप से अवयव बन जाएंगे, सो भी बात नहीं है, क्योंकि इन भागों के अतिरिक्त अवयवी संज्ञा वाले परमाणु का अभाव है। इस प्रकार इस नये के अवलंबन करने पर, यह इसी विशिष्ट नये के द्वारा परमाणु निरवय है, यह बात सिद्ध होती है। फिर से पहले उसको भी पर निरवय नहीं है बात सिद्ध की, सावयव है बात सिद्ध की थी, अब इस नये से वो निरवय है ये सिद्ध कर रहे हैं। संयुक्त पुद्गल स्कंध और असंयुक्त परमाणु प्रमाण उपलब्ध होने वाले पुद्गल स्कंधों का अभाव न प्राप्त हो, इसलिए अवयव रहित परमाणुओं का देश स्पर्श ही, यहाँ द्रव्यातिक नय के बल से सर्व स्पर्श है ऐसा कहा है, क्योंकि अखंड परमाणुओं के अवयव नहीं होने के कारण उनका सर्वस्पर्श ही संभव दिखाई देता है। अथवा दो परमाणुओं का देश स्पर्श होता है, अन्यथा स्थूल स्कंधों की उत्पत्ति नहीं बन सकती। उनका सर्वस्पर्श भी होता है, क्योंकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना प्रवेश होने में कोई विरोध नहीं आता। पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रवेश करने वाले परमाणु को दूसरा परमाणु प्रतिबंध करता है, क्योंकि सूक्ष्म का दूसरे सूक्ष्म स्कंध के द्वारा या बादर के द्वारा प्रतिबंध करने का कोई कारण नहीं पाया जाता। ये हमने देखा था ना, वो तो सूक्ष्म का, ये तो इवन जो जीव है, जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, किसी से उसको रोका नहीं जाता, प्रतिबंध नहीं पाया जाता। यहाँ तो केवल स्कंधों की बात है। शंका, सूक्ष्म का अर्थ बारीक है, दूसरे के द्वारा नहीं रोका जाना यह उसका अर्थ नहीं है। सूक्ष्म ने छोटा, छोटे उगाने वाला, और बादरे ने बड़ा, ऐसा शंकाकार पूछता है। समाधान, नहीं, क्योंकि सूक्ष्म का यह अर्थ करने पर महान आकाश आदि सूक्ष्म नहीं ठहरेंगे, वो तो अरूपी भी है और सूक्ष्म है ना, तो वो तो उसका साइज पर वो सूक्ष्मत्व नहीं कहते। इसलिए अपने स्वरूप को छोड़े बिना एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना प्रवेश का नाम सर्वस्पर्श कहलाता है। अतः सूत्र में सर्वस्पर्श के लिए परमाणु का दिया गया दृष्टांत वैधर्म्य नहीं है, यानी वो लागू होता है। इसी का विशेषार्थ, सर्वस्पर्श में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ पूरा स्पर्श लिया गया है, और इसके उदाहरण स्वरूप परमाणु द्रव्य उपस्थित किया गया है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ देश और सर्व दोनों प्रकार का स्पर्श देखा जाता है। परमाणु निरंश होता है या सांश, यह प्रश्न पुराना है। परमाणु अखंड और एक है, इस नये की अपेक्षा वह निरंश माना जाता है, किंतु प्रत्येक परमाणु में पूर्व पश्चिम आदि भाग देखे जाते हैं, इस नये की अपेक्षा वह सांश माना जाता है। इसलिए जब एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक क्षेत्र, एक प्रदेशावगाही स्पर्श होता है, तब वह सर्व स्पर्श कह, हमने देखा ना, एक ही क्षेत्र में एक क्षेत्रावगाही रूप से रहना वो सर्व स्पर्श है, और जब दो प्रदेशावगाही स्पर्श होता है तब वह देश स्पर्श कहलाता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। देखो, एक प्रदेशावगाही, क्योंकि परमाणु के परमाणु के साथ चल रहा है ना, नहीं समझे, ये दो परमाणु है,
एक प्रदेश में
तो। एक ही प्रदेश में दोनों आ जाना, तो कहेंगे एक प्रदेशावगाही, और ये परमाणु है बाजू में, दूसरा परमाणु है, ये दो प्रदेश अवगाही स्कंध हो गया उसका, उसका एक देश स्पर्श का, देश स्पर्श। अब 23 नंबर, जो सो फास फासो नामा, स्पर्श स्पर्श कहते हैं, ये निक्षेप नंबर 9 है ना, वही 3 पेज की बात है, कहते जोसो फासो फासो नाम। अब स्पर्श स्पर्श का अधिकार है, अभी सूत्रकार तक कहते हैं, सो अट्टव्यो कक्खड़ फासो मऊ फासो गुरु फासो लहु फासो निद्ध फासो रुख फासो सीध फासो उन्न फासो सो सवो फास फासो नाम। जो स्पर्श के 8 पर्याय है वही इनका इनका नाम लिया यहाँ पर, कि जो स्पर्श स्पर्श जो है वो 8 प्रकार का है, कर्कश स्पर्श मृदु स्पर्श गुरु स्पर्श लघु स्पर्श स्निग्ध स्पर्श रुक्ष स्पर्श शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श, वह सब स्पर्श स्पर्श है। जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, यथा कर्कश आदि, जिसके द्वारा स्पर्श किया जाए वह स्पर्श है, यथा त्वचा इंद्रिय। इन दोनों स्पर्शों का स्पर्श 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 कहलाता है। अच्छा, यानी जिस जो किया जाता है और जिसके द्वारा किया जाता है, इसलिए दो स्पर्श हो गए, वह 8 प्रकार का है, कर्कश स्पर्श मृदु स्पर्श गुरु स्पर्श लघु स्पर्श स्निग्ध स्पर्श रुक्ष स्पर्श शीत स्पर्श रुक्ष स्पर्श। इस प्रकार स्पर्श के भेद से स्पर्श स्पर्श भी 8 प्रकार का होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। ये हम प्राकृत में मऊ वो लिखा है ना, मराठी में मऊ शब्द आता है नरम, ये मऊ शब्द एग्जैक्ट उसको बताने वाला है, नरम में जरा अलग अर्थ आता है। ठीक है, यहाँ कितने आचार्य प्रधानता को प्राप्त हुए कर्कश आदि स्पर्शों के एक आदि संयोगों द्वारा स्पर्श भंग उत्पन्न कराते हैं, परंतु वे बनते नहीं, क्योंकि गुण निस्वभाव होते हैं, इसलिए उनका अन्य गुणों के साथ स्पर्श नहीं बन सकता। ये निस्वभाव क्या होता है, नहीं कह रहे आप, निर्गुणा गुणा है ना, ये द्रव्य का स्पर्श होता है, गुणों का नहीं बता रहे। क्या कहा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श को स्पर्श कहा है। अब यहाँ को गुण के पर्यायों की बात है, तो कर्कश का अन्य के साथ यानी जो शीत के साथ उष्ण के साथ ऐसा नहीं बन सकता, ये उनका कहना है कि गुण द्रव्य नहीं है, जिसको गुणों को निर्गुण कहा है वो बात यहाँ लेनी है। वो आता है ना द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण निस्वभाव होते इसलिए उनका अन्य गुणों के साथ स्पर्श नहीं बन सकता। प्रधान रूप से द्रव्यत्व को प्राप्त हुए इन गुणों का यदि स्पर्श स्वीकार किया जाता है, तो रूप रस और गंध आदि का भी स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि प्रधान रूप से द्रव्यपने की प्राप्ति के प्रति इनमें कोई अंतर नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, यदि हम वो गुण की मुख्यता से उसी को द्रव्य कहेंगे, जैसे हम ज्ञान गुण है उसके हम ज्ञान द्रव्य को भी कहते हैं, ऐसा ही अगर स्पर्श गुण को ही हम द्रव्य कहेंगे तो रूप को भी कहना चाहिए, गंध को भी कहना चाहिए, वो भी एक एक द्रव्य एक एक गुण की मुख्यता से उसको भी द्रव्य संज्ञा नाम दे सकते हम। यदि कहा जाए ऐसा भी हो जावे सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो सूत्र में ऐसा कहा नहीं है और दूसरा ऐसा मानने पर 13 स्पर्श न रहकर बहुत से स्पर्श प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए कर्कश कर्कश के साथ स्पर्श करता है इत्यादि भंग यहाँ नहीं कहना चाहिए। समझ में आना क्या बताना चाहते हैं, गुण की एक पर्याय का उसके दूसरे कर्कश का कर्कश कर्कश का वो मऊ के साथ इस तरह से बंद स्पर्श नहीं कराना है, इत्यादि भंग नहीं कहने, क्योंकि उनका द्रव्य स्पर्श और देश स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है। परंतु इसका वहां अंतर्भाव नहीं होता क्योंकि इसमें विषय विषयी भाव की मुख्यता है। यानी किसको विषय करता है इसकी बात है यहाँ मुख्य। अथवा सूत्र देशामर्शक होता है इसलिए निक्षेपों की संख्या का नियम नहीं किया जा सकता। अतएव अपने भीतर जितने विशेष प्राप्त होते हैं उन सबके साथ 8 स्पर्शों के संयोग से 255 भंग उत्पन्न कराने चाहिए।
कैसे हो गए? अपने भीतर जितने विशेष प्राप्त होते
हैं। हाँ बोलो, 255 कैसे हुए? वही तो, 6 के जो है तो हमने तो 6 बार 2 लिखा, अभी 8 बार 2 लिखा, 256 माइनस 1 255 हो जाएगी। यहाँ लिखा ना 255 कैसे हो गए? तो 2 को 8 बार लिखो,
128
128 का नाम क्यों लिया?
मैं कैलकुलेशन करता
हूं। डायरेक्ट 256 होते हैं और 256 माइनस 1 हो जाता है विशेषात। आगम में कर्कश आदि 8 स्पर्श माने गए हैं। इनका स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं। यद्यपि स्पर्श स्पर्श शब्द का स्पर्शों का जो परस्पर में स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं, एक यह अर्थ भी किया जा सकता है। पर इस अर्थ के करने पर सबसे बड़ी आपत्ति यह आ जाती है कि स्पर्श गुणों का अन्य गुणों के साथ होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श मानना पड़ेगा। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि गुण निस्वभाव होते हैं इसलिए उनका परस्पर में स्पर्श नहीं बनता, परंतु गुण को कथनचित द्रव्य मान लेने पर इस आपत्ति का परिहार हो जाता है। इससे यद्यपि गुण का दूसरे गुण के साथ स्पर्श मानने पर जो आपत्ति प्राप्त होती है उसका परिहार हो जाता है, पर ऐसे स्पर्श को अंततः द्रव्य स्पर्श का एक भेद मानना पड़ता है। इसलिए स्पर्श स्पर्श शब्द को ध्यान में रखकर यहाँ अन्य गुणों के साथ कर्कश आदि के होने वाले स्पर्श को छोड़कर केवल कर्कश आदि 8 स्पर्शों के परस्पर में होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श में गिन लिया है। इस प्रकार स्पर्श स्पर्श के 2 अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम यह कर्कश आदि स्पर्शों का स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो स्पर्श होता है वह स्पर्श स्पर्श कहलाता है, और दूसरा यह 8 स्पर्शों का परस्पर जो स्पर्श होता है वह भी स्पर्श स्पर्श कहलाता है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार स्पर्श स्पर्श के 1 संयोगी 8, द्वि संयोगी 28, यानी 7 का एक बार संकलन करना। त्रि संयोगी संयोगी हुआ 56, चतुः संयोगी वो विसर्ग बराबर लिखो 70, पंच संयोगी 56, षट संयोगी 28, सप्त संयोगी 8 और अष्ट संयोगी 1, कुल 255 भंग होते हैं। अब यही रुकेंगे हम। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तखनम सदा देत हो।